نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما
کسی کے گھر میں پراپر طور پر لانڈریٹ کا انتظام ہو, اچھی واشنگ مشین ہو اور استری وستری بھی گھر میں لگی ہو, تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ شخص باہر نکلے تو اس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوں, استری وہی ہو, میل کچیل بھی نہ ہو اور بالکل کلین ہو, کیونکہ انتظام ہے پورا صفائی کا. ذرا میلا ہوا آدمی کپڑا پھر مشین میں ڈال دے اور کپڑا دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے, استری موجود ہے, استری کی کریس کی الحمد للہ کپڑے پہن لیا, تو کپڑے میلے نظر نہیں آ سکتے, اس کے آ ہی نہیں سکتے. ہاں ایسا ہے کہ اگر انتظام بھی ہے سب کچھ ہے اور پھر بھی اس کے کپڑے اگر گندے نظر آتے ہیں باہر, کریس نہیں ہے یا دھبے ہیں, تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آدمی بہت سست آدمی ہے, کوئی قائل ہے. گھر میں سب چیزیں موجود بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے استعمال نہیں کرتا, سستی کی وجہ سے کپڑے گندے رکھتے ہیں اپنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال سے سمجھے آپ کہ ہم پر اتنا کرم, اپنا فضل اتنا کیا اپنے حبیب کے صدقے سے اس امت پر, ہمارے لیے ایسا انتظام کیا اللہ نے پورا سال میں, کس ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے مہینے اور ایسے ایسے دن ہمیں عنایت فرماتے دیتے ہیں کہ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتا ہے. تعجب یہی کریں گے دوزخی کہ کیسی عجیب امت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا تھا ان کا کہ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کے آنا. ہونا تو یہ چاہیے کسی عورت کسی مرد کو جہنم کی طرف آنا ہی چاہیے جس کا اللہ نے انتظام ان کا کیا تھا بخشش کا اور الحمدللہ معاف کرنے کا تھا انتظام تھا. ابھی آپ دیکھیں کچھ مہینہ دو مہینے ہوئے رمضان گیا ہے, کیا کیا رحمتیں تھیں, کیا کیا اللہ کے انعامات تھے, کیا کیا بخشش تھی, کیسے انعام تھے, کیسے عبادتیں نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ نے. مجھے بتائیں اس رمضان کے بعد کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جس کا کوئی جسم کے اوپر گناہ باقی رہ جائے سوائے بدقسمت, جس کو خود حدیث بھی کہتی ہے بدقسمت ترین انسان ہوتے ہیں اور مرد, کہ اس کے باوجود بھی ان کی زندگی بدلتی نہیں اور گناہوں کے اندر ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ ہمارے کوئی بندہ بھی جو اس امت کا جو جہنم میں نہ جائے. آپ بتائیں کس راتیں دی تھیں, کیسے دن دیے تھے, 30 دن دیے, توبہ کرو, معافی مانگو, آؤ مجھ سے, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, بھول جاؤ گناہ, ایک کے بدلے 1000 دیتا ہوں, 700 دیتا ہوں, 100 دیتا ہوں, یعنی کوئی حساب ہی نہیں تھا. پورے 30 دن 30 راتیں اعلان تھا. پھر کرم بارہ کرم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں, 2 مہینے گزرے, اللہ پاک نے پھر عنایت فرما دی کہ شاید پھر ان میں سے جو بدتمیز لوگ جنہوں نے میری اس اپرچونیٹی کو اویل نہیں کیا, پھر شاید عقل آ جائے, تو اللہ نے پھر ایک اگلے کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ نے ہمیں کتنا عظیم ایام نصیب فرما دیے. پھر وہی مانا پتا ہے نا کہ جس کے گھر میں صحیح مشین لگی ہو, صحیح انتظام ہو لانڈری کا, تو گندے تو کپڑے نہیں ہونے چاہیے, تو اسی کے ہوں گے جس نیا سست بدتمیز آدمی ہو. تو اب تعجب تو یہ ہے کہ اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ کوئی آدمی بھی ہمارا جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو صاف نہ کر لے, ایسے دن نہیں آپ دیے. अभी दो दिन के बाद आप देखेंगे क्या तमाशा लगने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमतों की क्या नज़ुल होंगी, क्या शान होंगी, क्या फजल होंगे, क्या करम होंगे, क्या इनायतें होंगी, क्या आदमी सोच भी नहीं सकता। सोचिए आप, अभी बस आज में खास 27 तारीख 27, 28, 29 को भी चांद नजर आ जाता, दो दिन समझ लिया, दो दिन थोड़ी जबरदस्त। देखिए अल्लाह के नबी समझ सब इन दिनों के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। ज़िलहज्जा शुरू होने वाला है तो अल्लाह ने सुभान अल्लाह देखें क्या रहमत कर दी। अब यही नहीं सिर्फ हाजियों के लिए रखा कि सिर्फ उन्हीं को इनाम मिले, नहीं, ये तो पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ने बख्शिश के दरवाजे खोल दिए। हज करे कोई ना करे, बस अकल करे थोड़ी सी। हदीस है जाबर रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं, हदीस को बुज़ुर्गान दीन ने इस हदीस को रवायत फरमाया है कि अल्लाह के नबी उसमें इरशाद फरमाया कि दुनिया के दिनों में, दुनिया सारे जितने हमारे दिन अल्लाह ने दिए हैं, दुनिया के दिनों में सबसे अफजल तरीन जो दिन है ये ज़िलहज्जा के 10 दिन है। कितना बड़ा करम है कि अल्लाह पाक हमें सेहत के साथ, ईमान के साथ ये दिन दे रहा है। आदमी की इंतहाई नहीं चाहिए शुक्र करने की, अल्लाह ताला इससे पहले तो मार दे, कुछ कर दे, लेकिन तेरा करम है कि रमज़ान में हमसे सुस्ती हो गई, फिर हमने वही शरारतें बदमाशी की, लेकिन तेरी करम रहमत फिर भी जोश में है कि शायद हमें अकल आ जाए, ये तौबा कर लें। तो फरमाया जितने दिन थे, अब रमज़ान शुरू सभी आ गए, पता अल्लाह के, अल्लाह की मर्जी जो कुछ भी हो, जितने भी दिन है दुनिया के अंदर सबसे अफजल तरीन जो दिन है वो कौन से हैं? 10 दिन। तो अब ये 10 दिन जो अफजल कहा जा रहा है तो कुछ तो होगा उसमें या नहीं होगा, कुछ तो बातें होंगी बताए। एक और हदीस में फिर थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया इस मामलात को कि कितने अफजल होंगे ये दिन, क्या होता होगा। हमारे इन दिनों के अंदर जो भी शख्स कोई इबादत करेगा तो अल्लाह सुबहान तला को उसकी यह इबादत, ये नेकी इतनी महबूब होगी कि किसी और दिन में अल्लाह को महबूब हो ही नहीं सकती थी। महबूब तरीन अल्लाह को होगी इस पूरे साल निकालने की तरफ, और जो इसमें इंसान कोई नेकी करेगा, इबादत करेगा, अल्लाह कहता है इससे ज़्यादा मुझे कोई आदमी महबूब नेकी नहीं दे सकता, मुझे नहीं पहुँचा सकता। नहीं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, कुरान की तलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तालीम तबलीग में निकले हुए हैं, ये नेकी सारी, नवाफिल पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी तो ढेरी है नेकियों की, तस्बीहात कर रहे हैं, अल्लाह ने तो नेकियों की तो कोई ढेर लगा दी। जो भी छोटी से छोटी आदमी कोई इस वक्त नेकी करेगा इन 10 दिनों के अंदर, फरमाया अल्लाह तआला कहते इससे ज़्यादा महबूब मेरे पास कोई और चीज़ नहीं आ सकती। तो आप सोचें कि अगर इसमें आदमी कोई नेकी करता है और तहिया करता है तो सारे मैंने मुकम्मल तौर पर, अब ये 10 दिन तो मैंने मुकम्मल लिबास, शक्ल, सूरज, जो कुछ भी है सुन्नत के मुताबिक करना है, बोले सुभान अल्लाह। तो आम दिनों एक सुन्नत पे अमल करना जो है 100 शहीदों का सवाब है, सुभान अल्लाह। इस 10 दिन के अंदर उसने कंट्रोल किया हर चीज पे, हर छोटी सी छोटी सुन्नत को उसने अदा किया, तो मुझे बताएं क्या सवाब ले जाएगा फिर इंसान। ये तो मामला ये है कि जो अपने आप को बख्शाना चाहता है, जिसे अल्लाह ने ये तो इतनी बड़ी फील दी, जो बख्शाना, जिसको कदर है आखिरत की, मौत की पता है, मरने का पता है, जिसको यकीन है कि मैं एक कलमा पढ़ने वाला हूँ, एक मुसलमान हूँ, हमारा सब कुछ, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक प्यासा है, वो सब प्यास उसको लगी है कि वो कहे जी फला 2 कदम के आपके सामने नलका है, सुभान अल्लाह किधर नलका, किधर कहिए नलका ही नहीं, ठंडा पानी है कूलर का, माशाल्लाह जी ठंडा ही नहीं है बल्कि शरबत है। उस प्यासे का क्या हाल हो, प्यासा हो, तो कोई ये यकीन रखता हो कि हमने अल्लाह के दरबार में जाना है, और जो गुनाह हमारे चिपटे हुए हैं, जो गुनाह चिपटे हुए हैं, आज सौदा कर रहे हैं हम अल्लाह पाक हमारे से कि या तो ये कर लो या फिर इन्हीं गुनाहों के साथ जहन्नुम की बहुत बड़ी सजाओं के अंदर तुम्हें फेंका जाएगा और तुम्हारी आग में उतार जाएगा। और एक एक गुनाह जो हमारे उसको हम गिनने बैठे, किस अजाब क्या है ये भी अल्लाह के नबी ने एक एक गुनाह की बताई है, کہ جہنم یہ اس انداز میں جہنم اس مقام پہ ہوگا, جہنم یہ شکل ہوگی, یہ کام ہوگا اس کے, اس طرح یہ ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ, یہ ہو رہا ہوگا, سب بتائیں. جو گناہ اس وقت ہمارے جسم میں موجود ہیں الحمد للہ, نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ پسندیدہ ہو جائیں گے, محبوب ہو جائے گا بندہ اس کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک عجیب نقطہ بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کام فعل مجھے محبوب ترین ہوگا, تو جو وہ فعل دے گا جو پیش کرے گا جب اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہوگا تو وہ بندہ تو خود بخود محبوب بن جائے گا اللہ تعالیٰ, اللہ تو اس خود پیار کرنے لگے گا. قسمتیں تبدیل ہوتی ہیں آدمی کی, دیکھ لیں آپ 10 دن اللہ پاک نے دے دیے, دیکھ لیں عبادت بھی محبوب. اتنا ثواب ہوتا ہے اس میں بھی بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثواب کیا ہو جائے گا اس میں, دیکھے ہمارے ثواب تو یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص ان 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے, اللہ توفیق دے ہٹے کٹے ہم سارے جو بیمار نہ ہو, جن کو شوگر نہ ہو, بلڈ پریشر نہ ہو, الحمد للہ ایسے بھی موجود ہیں لوگ شاید جو دوائیاں نہ کھاتے ہوں, ان کو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے ہے موجود, ان کے لیے تو پورا 10 دن اصلی ہونا چاہیے. سبحان اللہ, جو بیچارے مریض ہیں ظاہر ہے وہ تو لٹل نکل چکے ہیں, ان کے لیے دوسری باتیں بتائی جائیں گی, لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہٹے کٹے ہیں کھاتے پیتے ہیں مسٹنڈے ہیں مسٹنڈی ہیں عورتیں اور سب کچھ چلتا ہے منہ الگ چلتا رہتا ہے, ان کے لیے یہ ہے اس 10 دن کے اندر کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ پورا 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے, پورا 1 سال. تو یہ 10 دن آدمی روزے رکھ لیں مجھے بتائیں آپ کتنا زبردست ثواب ہو جاتا ہے اس کا, 30 سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. اور صحت والوں کو تو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, بس بھوک کی وجہ سے نہیں رکھ رہے یا سستی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے یا فلاں کی وجہ سے نہیں رکھ رہے, ایک دم ہمت باندھ لیں اللہ کے فضل سے. ہر عورت مرد جو صحت مند ہے الحمد للہ رکھ سکتی ہے, فوراً ہمت باندھ لیں کچھ بھائی نہیں 1 سال کا ثواب مل رہا ہے آپس میں بہو, اور وہ مقبول, یہ نہیں کہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے, روزہ کھولا نہیں ٹھپا لگا نہیں, اسی وقت 1 سال کا ثواب کس طرح ختم. پھر دوسرے دن بیٹھ گئے پھر اللہ نے یہ کام کر دینا اللہ کے وصل سے, 1 سال کا ثواب ملتا ہے آدمی. ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو اس کی افضلیت میں, اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں اس رات ان دنوں کے اندر ان دنوں میں پہ راتوں کے اندر چراغوں کو مت بجھاؤ. کیا خوبصورت بات کی, چراغ ہی ہوتے ہیں نا آج کل تو لائٹیں ہمارے, کہ لائٹوں میں ڈم مت کرو. کیوں بتایا یہ کہ ان لائٹوں میں جاگتے رہو اللہ کی عبادت کرو, اللہ نے یہ تمہیں لاٹری دے دی ہے, نعمت دے دی ہے, سونے کی راتیں نہیں ہیں, بس چاند چھونا مت اس میں, بہت کچھ پا جاؤ گے اگر تم سو گئے نہیں, سات ہو سارے سال ہی سوتے ہو کراٹے مارتے ہو, ہمت کر جاؤ کتنا ثواب ہوگا اس کا دیکھیں گے اللہ. اور میں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے گا, ان راتوں میں جو عبادت کرے گا تو فرمایا اس کو ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی برابر دیا جائے گا. ان انزلنا فی لیلۃ القدر, اس لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا تھا, ذرا پیچھے جا کے دیکھیں رمضان میں کتنی کوششیں کی, کتنی دعائیں مانگی تھیں, کتنے مجمع لگائے تھے, آپ دیکھیں اللہ نے نہیں بتایا کب ہے لیلۃ القدر, جو شروع کرایا ہمیں کس سے پتہ ہی نہیں ہمیں کب آ رہی ہے نہیں آ رہی, اور کتنی کوششیں شروع سے تلاش کرنا, یہ کرتے تھے نا محنت, پتہ ملی نہیں ملی یا نہیں ملی, یہاں تو مفت میں دے دی گئی اللہ تعالیٰ کا, کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, بس ختم رات عبادت کر ملی بیٹھ کے اللہ کے فضل سے مل جائے گا لیلۃ القدر. ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ جو رات کو عبادت کر لے گا اس کے علاوہ ثواب بتایا, عجیب ثواب ہے تو اللہ کے, یہ تو اللہ کی لاٹری نکلتی ہے, اس طرح ایسی سیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ بخشانے کے لوگوں کو, پھر بھی نہ امت بخشی جائے تو عجیب بات ہے. رات کی مارکیٹ ہو نا ہم ساری رات جاگ سکتے ہیں, मैं कसम खा कह सकता हूँ, सारा मजमा जा सकता है। ये रात की रात या तीन रातें हैं, इस रात में सारी रात एक मार्केट चलेगी और इसके अंदर जो है जो सुबह तक जो सेल होगी वो 5-5, 6-6 हज़ार हो जाएगी, कोई नहीं बैठे हुए हैं। वो यार एक ही रात है, चाय पीते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, जागेंगे नहीं जागेंगे, सही बात है, आराम नहीं जागेंगे कि चलो तीन दिन तो है ना यार, क्या है 5 हज़ार तो कमा लेंगे रात का, कर्जे तो उतरेंगे फला, बहुत खुश होंगे, बोले ओ वो दिन आने वाले हैं जब तीन दिन की जब मार्केट लगेगी 5-5 हज़ार मिलता है एक रात का, मंडी डे होता है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो शिकायत करेगी कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि शिकायत ये होगी नींद आ क्यों रही है, उस नींद को उड़ाओ, मुंह पे छींटे मारो, कॉफी पियो, चाय पियो, जागो, कमाने का वक्त है। कोई कमाई है वो, कुछ कमाई है वो, 5-10 हज़ार आपने कमाया, मैंने देखा है दुनिया में वाकयात भी, जेब में डाले आगे जेब कटी हो 5-10 हज़ार गायब भी हो गए उसके, गिर जाते नहीं गिर जाते, चोर ले जाते नहीं ले जाते। या अल्लाह ताला माफ फरमाए, कोई ऐसी औलाद एक लड़का ऐसा दे दिया कि वो कमा के लाता है, बाहर चर्स पीता है, शराब पीता है, लड़कियों में तकसीम करता है, माल बाप कमा के ला रहा है, वो बदमाशी कर रहा है बेचारा, कहाँ का पैसा। ये भी सजा होती है ना तब से, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं ऐसी उनके घर में ऐसी औलाद पैदा फरमाते हैं अल्लाह ताला कि जिनको दीन से ताल्लुक है तो उनको शौक ये पैदा फरमा देते हैं कि बाप कमाए हम उड़ाएं, बाप कमाए हम उड़ाएं, हम इसके पैसे को तो बस सत्यानाश कर दें, उड़ा दें, जो कुछ भी मुख्तलिफ शौक दे देंगे उसको, गाड़ियों का शौक, फलां का शौक, सबरों का, शहरों का शौक, कपड़ों का शौक, गाड़ियों का शौक, शौक ही शौक हो जाएगा। बाप चोरी से बदमाशी से झूठ बोल के कमाया जा रहा है और वो अपने शौक पूरे किए जा रहा है। ये है आज की दुनिया में, यह नहीं मेरे दोस्त, ये सजा है अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए। क्यों, क्या सजा है? सजा यह कि ये कमाई जो मैं दे रहा हूं आखिरत की, ये इनके नजदीक हैसियत नहीं रखती कि 10 दिन बेहतरीन कमरे के अंदर चाय पीने की इजाजत है, कॉफी पीने की इजाजत है, खाने की इजाजत है, टहल की इबादत करने की इजाजत है, जो चाय करो थोड़ा आराम करने के बाद फिर करने की इजाजत है। ये नहीं हमें पसंद, वो पसंद है कि खड़े रहेंगे सर्दी के अंदर मार्केट के ऊपर, जनाब अल्लाह नींद के गलबे होंगे और ठंड चल रही होगी, हवाएं आ रही होंगी, बारिश के झोंके आ रहे होंगे, खड़े 5 हज़ार आएगा, अल्लाह ताला का गुस्सा नहीं आएगा। क्यों गुस्सा, किस चीज़ का, नाराजगी क्यों? कि नाराजगी ये कि ये वो शख्स है कि इसमें ईमान नहीं है, ईमान होता है यकीन का नाम, एतबार का नाम, जो अल्लाह फरमाए उस पर मान जाने की बात, कहते इस शख्स को यकीन नहीं है मेरे पर, यकीन होता तो ये बंदर ये काम ना करता, वो उस तरफ भागता जो असल चीज़ है हमारी आखिरत की। ये हमारे यकीनों को शो करता है, जब हम आखिरत की कोई काम को छोड़कर दुनिया के काम को प्रेफरेंस करते हैं, उसकी तरफ भागते हैं, ये क्या शो करता है? ये झूठा आदमी है, नाफिक है, हिपोक्रेट, इसके अंदर ईमान नहीं है। ये कहता है मौत, यकीन नहीं मौत है, ये कहता है कि अल्लाह अल्लाह मानते ही नहीं है, कहता है दरबार इसको यकीन नहीं कि दरबार, जिसको यकीन हो कि ऐसी सजाएं मिलेंगी, जहन्नुम में ऐसा जाऊंगा और मुझे एक ये नेकी जो मुझे इतना बख्शवा देगी, छोड़ता है नेकी, बताए ये यकीन नहीं है, माने अपनी गलती को, और इसी यकीन पे सबसे बड़ी सजा होगी, मुशरिक बना देगा अल्लाह ताला कब्र के अंदर, शिर्क, शिर्क का जमर इंसान खड़ा कर देगा कि तू है ही मुशरिक, तूने तो हमेशा शिर्क करता रहा, अपने नफ्स को तो खुदा मानता रहा, शैतानों को तो पूछता रहा, मेरी बात तो सुननी नहीं, पूरा कुरान मैंने पढ़ा हुआ था, खुदा की कसम कुरान का हर सफा हर लाइन पढ़े आप, ऐसा लगता है वो हमें झंझोड़ रहा है कि तुम क्या हो गया तुम लोगों को, तुम अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं रखते? कभी लूत की मिसाल दे रही है, कभी सारे की मिसाल दी जा रही है, कभी यूनुस की मिसाल दी जा रही है, कभी किसी नबी की मिसाल दी जा रही है, पूरे कुरान के अंदर इनके अकल आ जाए, पढ़ते हैं ठक ठक करके फिर वहीं के वहीं होते हैं। तो ये सब शो क्या करता है कि इसके अंदर इन लोग को अल्लाह पे यकीन नहीं है, लोगों को अल्लाह की बात पे यकीन हो, जो अल्लाह कहते खत्म। हाँ तो भाई आप किसी शेख से आपको ताल्लुक है, अगर आपको शेख कह दे ये ना करे तो मुरीद पे अमल करता है, क्योंकि मुरीद को उस पर यकीन है, जो अपने शेख की बात पे नहीं करता उसको फैज भी नहीं पहुंचा, ये पता है, ये तो तस्वो कसूल है कि जो अपने शेख की बात को नहीं किया, जिसमें आप कहे तस्किया करें, जो हजार तस्किया नहीं करें उनके सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं है, अब हिमाक बता दो ना, उस औरत का उस मर्द का बिल्कुल उनको फैज बंद हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक हमारे सिलसिले को झुटला दिया है, शेख ने एक तरीका बताया, अल्लाह की तरफ से राजी हुआ और हुक्म हो गया अल्लाह की तरफ से एक किस्म का कि हर आदमी तस्किया करे जो इस सिलसिले से ताल्लुक रखता है, जिनको यकीन होगा उनको फायदा पहुंच गया जिन्होंने इसको अभी तक शुरू नहीं किया या मानिए उस पर गए नहीं। जी ये मैं आपको वाजा बता देता हूं कि इस सिलसिले से उनका ताल्लुक कट जाता है। एक बात को ना मानना, मैं हजरत कौल पेश कर रहा हूं कि राबता शेख में सा करे एक चीज भी कम होगी, ये अल्लाह के वलियों का कौल बता रहा हूं आप, कोई माने ना माने तमाशा नहीं है चीजें, ये आखिरत की मंजिल तय हो रही है। तसव्वुफ है जो खालिस करता है आदमी को जन्नत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, ये वो डब्बेबाजी नहीं होती, वो चलती है। जो इस लाइन में आते हैं वो इतने बुलंद मुकाम के लिए आते हैं, जो तसव्वुफ की लाइन में आते हैं वो मर्तबा एहसान के लिए दाखिल होते हैं। उनके मर्तबे बहुत बुलंद हैं, उनकी कोशिशें बहुत बुलंद हैं, उनकी इबादतें बहुत ऊंची हो जाती हैं, मर्तबा एहसान की तरफ चले, एक बड़े आला मंजिली की तरफ। जैसे होता है ना आदमी किसी छोटे कॉलेज में दाखिला ले, उसके बाद वो किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है एक होती है हाई क्लास यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में चला गया तो कितना फर्क होगा। ये तो कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इसके तो अंदाज बदल जाते हैं, इसकी तो मेहनतें बदल जाती हैं, इसके दर्जे बुलंद होते हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं सारे लोग एक जॉब के लिए, तो एप्लीकेशन जाएंगे तो वो देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से फारिग है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से फारिग होगा उस पर उंगली रखी जाएगी, पहले इसको कंसिडर किया जाए। ऐसा है ये दोस्त है। इसी तरह अल्लाह के नजदीक मेहनत करने वाले सारे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसकी हाई क्लासेस हैं। सबसे हाई क्लास अल्लाह के रास्ते में और रजा में मेहनत करने वाली कौन सी है, मर्तबा एहसान है, ये अल्लाह ने फैसला किया है इस चीज का। मैं नहीं कह रहा, उठा के देखें हदीस से जिब्रील उठा के देखें, उलमा करम मौजूद है, सबसे हाई क्लास बताया गया और उसका इतना बड़ा हाई क्लास ग्रेड दिया है कि जो इसमें दाखिल हो गया, मेहनत शुरू कर दी, वो इस मुकाम पे पहुंचता है कि या उसकी इबादत आम मेहनत वाली नहीं है, जब वो नमाज पढ़ रहा है दुनिया की नमाजें और उसकी नमाज कैसी है कि वो अल्लाह को देख रहा है, बोले सुभान अल्लाह, ये सूफी हाई क्लास में दाखिल ले लिया है, उसकी इबादत वो नमाजें नहीं रही है, वो चीजें नहीं है, दुनिया की जितनी मेहनतें हो रही हैं सबसे स्ट्रांग मार के उसने हाई क्लास में ले लिया, उसकी नमाज उस पोजीशन में पहुंच जानी चाहिए कि वो अल्लाह को देख रहा है। अगर थोड़ा सा ग्रेड उसका कम हो गया अभी मेहनत में तो फरमाया फिर भी कम नहीं हुआ, अब वो अल्लाह को नहीं देख रहा तो उसका पूरा यकीन होता है तो अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो इसमें दखल लेने वाले जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे नालायक बेवकूफ इंसान अल्हम्दुलिल्लाह इसके स्टूडेंट बन गए, और आप जैसे अच्छे नेक इंसान भी इसके स्टूडेंट बन गए जिन्होंने दाखिला ले लिया, तो उसकी कितनी बदबख्ती होगी इस मुकाम पे जाने के बाद भी इंसान फेल हो जाए, और इस वजह से कि वो रूल एंड प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहा, जो हुक्म आ रहा है कि इसमें आप ये काम करें उसको मजाक इस्तेहज़ा समझता है। तो हुक्म ये हो गया है, इस असूल ये बना जो बुजुर्गान दीन ने और जो सलासल के जो बुजुर्ग हैं उनको बनाया, इसके अंदर अगर एक बात भी कमी हो जाए अपने शेख की बात मानने में जो वो तस्की के लिए दे रहा है, जो किसके लिए दे रहा है, तस्की के लिए दे रहा है, आपकी उस लाइन की सिलेबस है, आपकी किताब आपको दे रहा है और उसमें उस किताब को नहीं कर रहा, तो वो शख्स फेल हो जाता है, उसका फैज बंद हो जाता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता उसका, बैठ जाता है जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो ये जाता है रूहानियत के अंदर उसका फैज बंद हो जाता, चाहे कितने बहाने वाले में तो ये उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो काम करना ही पड़ता है उस स्टूडेंट को। आप ये देख लें जो थीसिस बताया जाता है यूनिवर्सिटीज में, आप जाए फाइनल ईयर होता है ना तो थीसिस देते हैं लिखने के लिए, हमने किया यही काम बताया यूनिवर्सिटी में, तो आखिर जो थीसिस वो सारा कंक्लूजन होता है उस स्टूडेंट का पढ़ने के बाद, आपके टॉपिक इस पर लिखे हैं आप, इस पर रिसर्च करता है प्रोफेसर वगैरह सब हाथ उठा लेते हैं उस चीज से, ये मैं दुनिया इलम की बात कर रहा हूं, फिर वो रिसर्च करता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाता है, ट्यूटर तलाश करता है, उसको खूब रिसर्च करने के बाद फिर उस थीसिस को देखा जाता है कि उसने किस किस्म की एबिलिटी कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है। तो आइन ये रूहानियत का मामला है दोस्तों, बात समझिए, तो एक बात निकल आई, बात किसकी चले रहते हम तो लहजा की कह रहे थे, तो अल्लाह सुभान तआला ये कहेगा कि इतनी मैंने इनकी रियायतें सब कुछ दी, इतना बड़ा मुकाम दिया कि एक रात की जागने की इबादत का सवाब सुनने आप कितना है, ये हदीस पे आपको सुना देता हूं। एक साल का बताया ना आपको कि पूरी एक साल के बाद हो लैलतुल कदर, हर 10 दिन तक लैलतुल कदर रिकमेंडेड का सवाब आपको मिलेगा, और अल्लाह ने कह दिया कि तुम क्या पता कि लैलतुल होती क्या चीज है, फरमाया अल्लाह के नबी सुनाते हैं कि اس کے علاوہ رات کو جو عبادت انسان کرے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ پورا سال حج اور عمرہ کرنے کا پورا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک رات میں جاگا ٹوٹی پھوٹی عبادت کی, عبادت کے ٹوٹی پھوٹی بات جو کر سکتے تو کتنا ثواب, کہ جیسا ایک رات وہ میری اتنی قیمتی ہوگی کہ پورا سال جو آدمی حج اور عمرہ کرتا رہا ہو, حدیث کے لفظ پورا سال اللہ اکبر جو حج عمرہ کرتے رہا ہو اس کا ثواب ایک طرف, اس رات کے اندر جاگ کر تھوڑا سا عبادت کرنے کا ثواب. اب حدیث میں بہت ہم ذکر بھی کرنا ہے, آخری قصہ سنا دیتا ہوں حدیث کا. اس قصے کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر, عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث وہ پیش کرتے ہیں. کس درجے پہ مجھے پتہ نہیں, مستند تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن اتنے بڑے آدمی کی طرف سے لکھی گئی حدیث ہے کہ اس میں کوئی اصل تو ضرور ہوگی. بات پیش کرتے ہیں حدیث کے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ چار ہماری طرح تھا, ہمارا قسم کا بس گانے سن لیے بجانے سن لیے, یہ وہ حرکتیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں. تو وہ جانتے تھے سب یہ ابال قسم کا آدمی جو حرکتیں کرتے رہتا ہے, الٹی سیدھا صحیح نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, وہ گندے کام بھی کرتا ہے فاسٹ فوڈ والے. تو کسی نے آ کے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جی ایک شخص ہے فلاں فلاں. ہاں ہاں کیا ہوا؟ کہتے جی وہ تو بڑے روزے رکھ رہے ہیں سبحان اللہ, اور رات کو جاگ کی عبادت بھی کر رہا ہے. کہتا اچھا بلا کے لاؤ اس کو. ذرا بلا لیا اس کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کام کیسے شروع کیا یار, روزے رکھ رہے تو نیک کام کر رہے. یا رسول ڈر گیا کہ یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں, میں تو نیک تو نہیں ہوں, میں تو بہت خراب آدمی ہوں. اس نے کہا میں کوئی غلط کروں, مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. کہتا نہیں بتا کیا معاملہ کیا تیرا. کہتا جی بات سچی بتاؤں گا. کہتے جی یہ ذی الحجہ کے ایام ہے, ہم نے تو آپ سے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت عظیم ہوتی ہے سب دنوں کے اندر, اور اس اللہ کی رحمت کے اندر تو پھر جب بارش پڑتی ہے نا تو اللہ یہ دیکھتا کہ یہ زمین گندی ہے یا زرخیز ہے یا جنگل ہے یا وہ بارش کرتے پھر ہر جگہ پڑ جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو ہوں تو بہت ہی گندا فضول آدمی ہوں لیکن کیا کروں, یہ دس دن ہی پکڑ لوں. کتنی بڑی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے یہ واقعہ دیکھیں کہ ہم اس دس دن پہ اکتفا کر لیں کہ چلو بھائی اس پہ تو کریں کوشش, الحمدللہ جو ہو گیا ہو گیا, اتنی بدماشی کی ہے لیکن ہو سکتا ہے آج تک کام چل جائے, اگلے سال تک کا معاملہ بن رہا ہے. اب کہیں پھر میں سوچا چلو بھیا آپ ہی سے سنے ہم نے سنے, میں کہا چلو چلو روزے رکھتا ہوں ہٹا کٹا آدمی کیا فرق پڑتا ہے, بولا تھوڑا دن کے لیے بدماشی چھوڑ دیتا ہوں, دس دن نہیں سگریٹ پیوں گا, نہیں بدماشی کروں گا, نہیں دیکھوں گا میوزک گانے ٹی وی نہیں سنوں گا, نہیں ڈاڑیاں کاٹوں گا اپنے. چلو اللہ کرے ہمیشہ رکھنے کی توفیق ہو. تو اس 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 اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جتنی نیکیاں آپ کریں گی اس نیکیوں کا ثواب میں بتایا نا, اس دس دن کے اندر کسی نے اگر اپنی داڑھی کی نیت کر لی میں نے داڑھی رکھی, وہ داڑھی تو عظیم داڑھی ہو, اللہ کہے گا میری محبوب داڑھی ہے سبحان اللہ. رکھے گا تو پھر بھی جب ڈاکٹر کہہ دے گا تجھے یہ اگزیما ہو گیا تجھے بال چھوڑنے پڑیں گے, پھر کیا کرے گا, رکھنا پڑے گا نا پیچھے, منہ ٹیڑھا ہو گیا فالج ہو گیا دانت نکل گئے پھر کیا کرے گا. اور میں نے اپنی زندگی مثالیں دیکھی, ایک صاحب تھے, مثال دے رہا ہوں تقویت کے لیے, مانچسٹر کی بات محبت تھی, پروفیسر بہت اونچا پروفیشن تھا ان کا, آتے تھے سنتے تھے میری باتیں تو میں تلقین کرتا تھا کہ چہرہ اچھا نہیں ہے آپ کا, یہ واجب ہے فرض کے درجے پہ داڑھی رکھنا, اللہ کرم موجود ہے پوچھ لیا انہیں کبیرہ ہے, یہ وہ سنت نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے, نہیں یہ تو واجب ہے واجب. سارے اس میں ماں جو عائم ہے متفق ہیں اس بات کو, ایک مشت مجھ سے کم داڑھی نہیں ہوتی, یہ بھی سن لیں مجھ سے کم جو ہوگی وہ داڑھی نہیں ہوگی, جو ادھر سے ادھر سے مجھ سے کم رکھے گا تراشے گا وہ داڑھی نہیں ہے, وہ بولی اسی فاسی کرتا پوری رکھنی پڑتی ایسے ایک مشت باقی کاٹ دو مرضی آپ کی. تو خیر ان کے اثر ہوئی بات, انہوں نے داڑھی رکھ لی الحمدللہ. میں نے والد کی بات بھی دی, چلے چلتے رہے چلتے پھر شیطان آ گیا, بعض لوگ اس مذاق کر سمجھتے ہیں اس کو, انہوں نے پھر شروع کر دی, بس بات ختم ہو گئی. ہر وقت تھوڑی آدمی کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے, کسی کو تعلق تو اتنا نہیں ہوتا, ایک تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے, بتایا ہے نصیحت کی اپنی محبت سے آدمی گناہ سے نکال لو, اور کوئی اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑتا نا آدمی, تم کیوں نہیں کرتا, بس نہیں کرتا وہ ایک ہی دفعہ کرتا ہے, جو کرتے رہے پھر کرتے ہیں, کسی کبھی تعلق نہیں ہوتا پھر اللہ جائیں جو چاہے کریں خوشی سے کریں, किसी शिकवे के सामने आप खड़े हो जाएं, किसी हालत में खड़े हो जाएं, उनको कोई अफसोस नहीं होता। याद रखें, कभी नहीं अफसोस हो। मेरे सामने कोई आ जाए जिसने 30 साल 15 साल मेरे साथ रहा हो, आके बंदरों की तरह मेरे सामने आ जाए, आई वोंट हैव एनी, कोई एक्सप्रेशन मेरे अंदर नहीं आएगा कि मैं तकलीफ हो कुछ, अफसोस हो। अगर देखें शख्स नहीं समझ सकता अल्लाह की बात को, सकता कैसे, मुझे नहीं आता, गया जो गया। तो मैं ठीक है, तो हुआ क्या, अला खुद उस प्रोफेशन में थे, अच्छे डॉक्टर था, बड़ा जीपी था, सर्जन। हुआ गया थोड़े दिनों के अंदर, मैं तो खैर आ गया, तो पता चला जी मुंह टेढ़ा हो गया, अंदर कैंसर हो गया मुंह के अंदर, मुंह को काटना पड़ा, जबड़ा टेढ़ा हो गया बेचारों का। तो जिस खूबसूरती के लिए उन्होंने अल्लाह के मैं खूबसूरत नजर आऊंगा, अल्लाह के इस इतने बड़े हुक्म को सुनो ख़त्म किया था, अल्लाह ने उसको सवा करके उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। तो ये इबरतें हैं, अब क्या करेंगे भी वो आदमी, कि तुझे इतनी बड़ी, इतना तो हो गया बहादुर बन गया, तो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया इस हुक्म पर कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं, और तू उसको इस्तेज़ा करता है, मजाक करता है उन बातों को। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मैं डील देता हूँ, मैं डील देता हूँ इंसानों को, एकदम नहीं अल्लाह ताला पकड़ते, झील की मियाद अल्लाह ताला की, कहते हैं इतनी ढील देता हूँ कि वो अपने गुनाहों पर बहादुर हो जाता है, अपने गुनाहों पर बहादुर हो जाता है, कहते मुझे कुछ हो ही नहीं था, और वो करना शुरू होता है, पक्का हो जाता है गुनाह पे, कहता जब वो पक्का हो जाता है, कहता फिर मैं उसको पकड़ता हूँ, ऐसा कि फिर उसको छुड़ा कोई नहीं सकता। अल्लाह ताला के निजामों से हम बचाएं, कि जब हमारे कानों में हमारे पास अल्लाह ताला के मैसेज पहुँच रहे हैं किसी चीज़ को, गुनाहों को ख़त्म करने के, हमें गुनाहों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो फरमाया एक रात का सवाब कितना बड़ा सवाब दिया है, पूरा हज और उम्र। तो वो जो आदमी थे उसने कहा जी मैं तो इसलिए मैंने रख लिया कि मैंने सोचा कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, तो उधर अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया। वो उसके लिए नहीं था बल्कि हम जैसे सारे गुनाहगारों के लिए था कि हम इसमें काम करें 10 दिन के अंदर। करेंगे भाइयों, बात सुन रहे हैं, सो रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सुन रहे हाथ खड़ा करें, जागी रहे सारे। अच्छा, अब उसने अल्लाह के नबी का फरमाया, अल्लाह के सलाह फरमाते हैं हदीस में, जैसी आपने सुना फरमाया, सुन जो तू काम कर रहे हैं ना, मैं तुझे बताता हूँ पागल, तुझे स्वभाव तू कितना लेके जा रहा है। वो तो हैरान हो गया, मैं तो बख्शी के चक्कर में था, स्वभाव आ रहे हैं। फरमाया तेरे एक रोजे का स्वभाव जो है सुन अब कितना है, अल्लाह एक रोजे के अवस तुझे मिलेगा 100 गुलामों को आजाद करने का स्वभाव, 100 ऊंटों को कुर्बानी करने का स्वभाव, 100 घोड़ों को जैसे तूने लड़ाई के अंदर भेज दिया, दुश्मनों के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसका स्वभाव बताए आप। तो मेरे भाई तो स्वभाव है ना हमारे लिए, नहीं है, हम तक उससे गंदे आदमी हैं, तो ये 10 दिन हमें छोड़ने चाहिए। जैसे जैसे इंसान की हैसियत है, मैं अमाल तो आपको सारे बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी जैसी हिम्मत है जैसा कुछ है, आज से नियत कर ले अल्हम्दुलिल्लाह कि 2 दिन के बाद हमारी जिंदगी मुख्तलिफ होनी चाहिए, 10 दिन के लिए गुनाह बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए, सुन्नतों में कंप्लीट अमल हो जाना चाहिए, हर अमल नेकी का जो भी मिल रहा हो उसको फौरन कबूल कर लेना चाहिए, हमारी शक्लें बदल जाएँ, लिबास बदल जाएँ, तर्ज बदल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ में हम बस हो जाए, जितने हमारे हिम्मत हो नेकी करने की, हर नेकी को कबूल करना चाहिए। और जो माशाल्लाह सेहतमंद इंसान है, खाते पीते आदमी है, जिससे मौजूद है, कोई दवा शवा नहीं चल रही, कोई गोली नहीं चल रही डॉक्टर की, तो फिर उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है इन रोज़ों को रखने, देख लें 30 भी तो रखे ना, तो ये 10 पूरे भी कहें, ये तो 9 ही है ना मेरा ख्याल में, 10वां तो ईद वाला दिन तो नहीं रोजा भाई, ये पूरे अल्लाह के फज़ल। हाँ, इसमें एक और भी है कि जैसे जैसे रोजे बढ़ते जाएंगे ना, उनके सवाब भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर याद रखें अभी उसके बात नहीं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी अगले सवाब कितने आ रहे हैं इन रोज़ों के, ये तो इब्तदा हो रही है अल्लाह के फजल से। तो जिसकी इब्तदा इतनी हसीन है, तो इंशाल्लाह आखिर में जाके इतनी बड़ी चीज़ बनी। उसने एक फिक्रा कहा था उस आदमी ने, साहबी होंगे कहने के, बात कसर यह है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग तो हज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत काम करके मैं भी उनकी दुआओं में जो मांग रहे हैं, और कौन हाजी उसमें गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, ज़ाहिर है उसमें तो हज़रत इस्लाम भी हैं, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी हैं, सुनते हैं वो भी आते हैं हज के ऊपर सबको, उसने कहा जो भी उसमें शामिल है और जो दुआएं मांग रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये निकी करके शायद मैं भी उनकी दुआ में शामिल हो जाऊँ। अल्लाह के नबी फरमाया शामिल हो चुके हो, शामिल हो जाते हैं। बताओ भाई इतनी बड़ी चीज के बाद हम अगर इस 10 दिनों को मना लें तो कोई नजर आएगा डॉट हमारा जो हमें जन्नत में ले जाए, बख्शे 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 हर औरत मर्द। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए इन 10 दिनों को बड़े मौत पर बड़ी इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, इनकी सबसे बड़ी इज्जत एहतराम ये होगा इन दिनों के अंदर गुनाह ना किया जाए, गाने बजाने बंद हो जाएं, टेलीविज़न बंद हो जाएं, निगाहें नीचे हो जाएं, घर के अंदर सब बदी निकल जाए, खराफात ना हो, बेहयाई ना हो, तब जाके बस ये 10 दिन गुजार लें इस तरह, हर खराफात घर से निकाल दी जाए, कोई गंदी चीज़ नजर ना आए, कोई वाहियात चीज़ ना हो। ये भी भेद भी है ना, असमत नहीं ना इस चीज़ की, हम तो फिर उसकी डिस्ग्रेस कर रहे हैं 10 दिनों का, बिल्कुल फना कर दें चीज़ों को, छुपा दें सब चीज़ों, नालायक निकल नहीं सकती चीज़ 10 दिन। अल्लाह अपने फजल फरमाएंगे इंशाल्लाह इस 10 दिन की बरकत से जिंदगी बनने निकलेंगी, वो चीज़ें आपके घर से बुराई ऐसी निकल जाएंगी जिसका तसव्वुर भी नहीं हुआ। अल्लाह पाक हमको तौफीक नसीब।